दिव्या तीर्थ यात्रा के पुण्य से अपनी कलापीठ के उत्तराधिकारी की खोज में सफल मनोरथ होकर दिव्य मल्लिका के सागर नगरी में लौट आने से साधारण जन अभिजात समाज दोनों ही अत्यंत पुलकित और उत्साहित हुए। देव मल्लिका को संतुष्ट करने में समर्थ नर्तकी रत्न के दर्शनों के लिए सागर का समाज व्यग्र हो उठा। दूरवर्ती नगरों और ग्रामों से भी अनेक रसिक और कलाविद पधारने लगे। उस रमणी श्रेष्ठ के दर्शन पाने के लिए देवी के प्रसाद में समाज के स्वविराट जनसमूह एकत्रित हो गया। कंधे से कंधे भिड़ते रहते और आसन के लिए स्थान पाना कठिन हो जाता, परंतु नवांगतु उत्तराधिकारिणी के दर्शन कोई न पा सका। वह देवी के अंतःपुर में ही रहती। मल्लिका ने घोषणा की अपनी उत्तराधिकारिणी कला के अधिष्ठात्री का अभिषेक व फाल्गुन की पूर्णिमा के शुभ पर्व पर करेंगी, तभी जन उसका दर्शन पा सकेंगे। एक मास की प्रतीक्षा सागर के जन समाज के लिए अत्यंत अधीरता का कारण थी। देवी मल्लिका ने एक विराट बलि यज्ञ का अनुष्ठान देवताओं की तुष्टि के लिए किया। उस यज्ञ में 100 विद्वान याज्ञिकों ने स्वस्ति वचन किया और पुरोहित का आसन मल्लिका के अनुरोध से धर्म के व्यवस्थापक गण परिषद के महामार्ग में महापंडित महाआचार्य रुद्रधीर ने ग्रहण किया। मल्लिका के उत्तराधिकारिणी के अभिषेक का आयोजन रजत पुष्करणी के तट पर किया गया। वेदी के सम्मुख विस्तृत अर्धचंद्राकार पंक्तियों में सामंतगण द्विज कुलपति अभिजात समाज और गण परिषद के सदस्य और कुल्लाड़ियों के लिए आसन था। उसके पश्चात सागर के धनिक वर्ग श्रेष्ठियों श्रेष्ठी ज्येष्ठकों और अंतरायन के ज्येष्ठकों और उनके परिजनों के लिए स्थान था। तदंतर सैनिक वर्ग और सर्वसाधारण जन का सागर की दृष्टि की सीमा तक उत्सुकता से उमड़ रहा था। केंद्र में सिंहासन पर तनगुण निधान महाशामंत परम भट्टारक श्रीदेव स्वार्थ सर्वार्थ और उनके सभी महाबात में महाआचार्य रुद्रधीर शोभायमान थे। गौतहूल का नमन न कर सकने के कारण अति अनेक वीतराग भिक्षु भी विशाल जनसमूह में अपनी कासाय चीवड़ों में उपस्थित थे। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने सत्ययन किया। नगर की प्रधान नर्तकी और मल्लिका की शिष्याओं ने मंगलाचरण स्वागत उपचार किया। नक्षत्रज्ञ ब्राह्मणों ने देवी मल्लिका के उत्तराधिकारिणी के लिए अमर कीर्ति की भविष्यवाणी की। शुभलग्न में श्वेत पुष्पों से आच्छादित सेविका में कला की नवीन अधिष्ठात्री को वेदिका पर लाया गया। मल्लिका ने अपने वत्सल करों से स्वयं अपनी उत्तराधिकारिणी को सेविका से उतारकर अपने आसन पर आसीन किया। शुभ अवसर के लिए मल्लिका ने अपने करों से अपनी उत्तराधिकारिणी का श्रृंगार किया था। उसके मुखमंडल मुक्तावलियों के शेखरों में अदृश्य था। जनसमूह चरम उत्सुकता से उत्सव का अनुष्ठान समाप्त होने पर मल्लिका की उत्तराधिकारिणी के दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वेदपाठी ब्राह्मण ने पात्र में मंत्रपूट अक्षत चंदन दुर्वा और रोली पात्र में मल्लिका के सम्मुख उपस्थित किए। देवी मल्लिका ने अपनी दक्षिण कर की अनामिका अंगुली से रोली और अक्षत लेकर मुक्तावलियों की शेखरों में छिपे उत्तराधिकारियों के मस्तक पर तिलक कर दिया। शंख भेरी तुरही और नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। संभ्रांत विशिष्ट जन अपने आसनों से उठकर नव जनपद कल्याणी के प्रथम दर्शन की भेंट अभिषेक के आसन के सम्मुख रखने लगे। अभिषेक तिलक कर देवी मल्लिका ने नतजानू हो कला की नवीन अधिष्ठात्री के चरणों की वंदना की। आतुर और व्यग्रजन अभिषेक जनपद कल्याणी के दर्शनों के लिए कोलाहल कर रहा था। मल्लिका के संकेत से चारण ने शंखनाद किया। जन सहसा स्तब्ध हो गया। देवी ने अपने उत्तराधिकारी के मस्तक से मुक्तावली का शेखर दूर कर जन को उसका दर्शन कराया और स्वयं जन के सम्मुख वंदना के लिए नतजानू होकर मस्तक झुका दिया। जनसमूह श्वास रोके अष्टम्ध नवीन जनपद कल्याणी की ओर दृष्टि लगाए थी। कुछ पल तक अष्टम्धता रहने के पश्चात अभिजात वर्ग की पंक्तियों से अस्पष्ट अस्फुट गुंजन सा उठने लगा। टाट धर्मष्ट की प्रपोत्री दिव्या, विष्णु शर्मा की पौत्री दिव्या, द्विजकन्या दिव्या, कुलकन्या दिव्या, विप्रकन्या दिव्या। जन की वंदना से मस्तक उठाकर मल्लिका ने देखा, सामंत वर्ग अभिजात समाज की पंक्तियां विश्रृंखल हो रही थी। क्षण भर में एक ललकार सुना दी। मंदिर में द्विजकन्या वेश्या के आसन पर बैठकर जन के लिए भूंग बनकर वर्णाश्रम को पारित नहीं कर सकती। आचार्य भृगु शर्मा ऊर्ध्व बाहु खड़े होकर आवेश कांप रहे थे। वह ललकार पर्वत श्रेणियों से आवेष्टित उपत्यका में वेग की गर्जना के शवल सब ओर से प्रतिध्वनित होने लगी। अभिजात वर्ग की पंक्तियों में दरमुंडों के ऊपर कुछ खड़ग दिखाई देने लगे और फिर अनेक खड़ग। देवी मल्लिका स्तब्ध अवाक पलक खड़ी रही। चारों ओर बढ़ते तुमुल कोलाहल में वे हतज्ञान हो गई। दिव्या सुर झुकाए मौन बैठी रही। दिव्या अपने आसन से उठ खड़ी हुई। शांत पगों से जन की ओर जाकर वह वेदी के किनारे पर खड़ी हो गई। उसका हाथ मौन के संकेत में उठ गया। कोलाहल सहसा शांत हो गया। दिव्या का स्वर सुनाई दिया, जन समाज और कुलवर्ग सुने, मैं इस विषय में धर्म व्यवस्थापक नीतिविद आचार्य रुद्रधीर का निर्णय जानना चाहती हूँ। जन समाज और कुलवर्ग की दृष्टि महाभारत के आसन पर सीधे रुद्रधीर की ओर गई। आचार्य मौन थे। उनके उत्तर की प्रतीक्षा में जन सागर मौन था। उठे हुए खड़गों का समूह निश्चल था। आचार्य के मौन से जन समाज अधीर होने लगा। विचार में मस्तक झुकाए आचार्य का छीन स्वर सुनाई दिया, वर्णाश्रम की व्यवस्था त्रिकाल के लिए सत्य है। दिव्या उस निर्णय को मनस्थ करने के प्रयत्न में क्षण भर आचार्य की ओर निष्पलक देखती रही। मौन स्वीकृति के संकेत में उसने सूर्य झुका दिया अष्टु। दिव्या वेदी से उतरकर एक ओर चल दी। राजहंसनी के सम्मुख फट्टी जाति सरोवर के लहरों के समान समूह उसके लिए मार्ग देता जा रहा था। दिव्या मस्तक ऊंचा किए किसी ओर ना देखकर चली जा रही थी। दिव्या अभिषेक की वेदी से उतरकर अप्सरा के वेश में राष्ट्र सागर के राजपथों पर पैदल चली जा रही थी। विराट जलसमूह कौतूहल का नमन न कर सकने के कारण उसके अंतर पर पीछे पीछे चला जा रहा था। दिव्या ने घूम कर उस ओर न देखा। वह हंसों के समूह के सम्मुख नेता राजहंस की भांति निश्चल ग्रीवा उठाए चली जा रही थी। दिव्या नगर से बाहर आ गई। सूर्यास्त हो चुका था। फाल्गुन पूर्णिमा का चंद्रमा क्षितिज से ऊपर उठ चुका था। संध्या के आरंभ में चंद्र की दृष्टि ज्योत्सना फैल रही थी। उस क्षीर आलोक में दिव्या ने पूर्व दिशा में दिगंत तक फैले मार्ग की ओर देखा और शांति का एक निश्वास लेकर नगर द्वार के बाहर बनी पंथशाला की ओर दृष्टि की। रात्रि में दीर्घ पथ पर अकेले यात्रा करने की सुविधा में दिव्या क्षण भर मार्ग पर खड़ी रही और फिर रात्रि पंथशाला में व्यतीत करने के विचार से उस ओर मुड़ गई। रात्रि में नगर द्वार मुंड जाने के पश्चात द्वार पर पहुंचने वाली यात्री स्थान पर रात्रि बिताते थे। प्रातः सूर्योदय से पूर्व यात्रा आरंभ करने की इच्छा रखने वाले यात्री भी संध्या समय ही वहां आकर टिकते थे। दिव्या पाठशाला के द्वार से आंगन में होती हुई अलिंद पार कर एक कन्हारे कक्ष में जा बैठी। जनसमूह भी कौतूहल से उसके पीछे पीछे चला आकर श्रेय श्रेय आंगन में भरने लगा। आंगन मनुक्षत्र की भांति गुंजायमान हो उठा। आंगन में स्थान न रहने पर जन पाठशाला की प्राचीर को घेर कर एकत्रित होने लगे। कौतूहल अधीरता विरोध और संवेदना से प्रेरित होकर नागरिक अनेक प्रकार के प्रसंग अभिषेक च्युत राजनटकी के संबंध में उठाकर परस्पर ऊंचे स्वर में वाद प्रतिवाद कर रहे थे। पाठशाला का रक्षक राजपुरुष उस अवस्था से खिन्न होकर जन को पाठशाला का मार्ग और आंगन पथिकों के लिए छोड़ देने के लिए ऊंचे स्वर में पुकार रहा था, परंतु उसकी बात जनरों में अनसुनी ही रह जाती। पाठशाला का द्वार मुंड देना भी संभव न था। एक भिक्षु ने जनसमूह के समीप आकर ऊंचे स्वर में पुकारा, हे नागरिकों, समाज में प्रताड़ित दुखी नारी के समीप जाने का मार्ग मुझे दो। अभिषेक चुट राजनटकी के समीप जाने का मार्ग दो। हे नागरिकों, मैं उस क्लेष्टा को शांति देने आया हूँ। भिक्षु की पुकार भी कोलाहल में अनसुनी ही रह गई। सूर्यास्त और चंद्रोदय के मिश्रित झिलामिल आलोक में पूर्वी मार्ग से एक पथिक चला आ रहा था। पाठशाला को घेरे हुए जनसमूह को देखकर कोलाहल सुन पथिक के दुटगत पग शिथिल हुए और रुक गए। पथिक के केशों, मुख, वस्त्रों और पांव पर जानू तक चढ़ी धूल उसके दिन भर राजमार्ग पर पैदल चलने का प्रमाण थी। पथिक ने उस भ्रामक आलोक में अपने नेत्रों पर बल देकर जनसमूह को देखा और कानों को सतर्क कर कोलाहल का अर्थ समझने का यत्न किया। केवल की भिक्षु की पुकार उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पथिक मार्ग छोड़कर पाठशाला को घेरे जनसमूह की ओर आ गया। उसने समूह को संबोधन किया, हे सागल के सौम्य नागरिकों, क्या मथुरापुरी से आने वाली नट की अंशुमाला का अभिषेक पूर्ण हो गया? वह अभिषेक देखने की कामना से ही मैं द्रुतवेग से पैदल चला आ रहा हूँ। दो मास्टक सामर्थ्य भर वेग से चलकर मैं इससे पूर्व सागल न पहुंच सका। सौम्य नागरिकों, पथिक को समाचार दो, क्या अंशुमाला के अभिषेक में विघ्न पड़ गया? नागरिकों, अंशुमाला का कुछ अरिष्ट तो नहीं हुआ? व्यस्त जन समूह से एक व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान दिया। ओह, मूर्तिकार दार्शनिक बारिश, कौन? अंशुमाला दुष्कृत्य यशस्वी धर्मष्ट देव सर्वा की प्रपोत्री। हाँ, बारिश ने अनुमति का संकेत दिया। दिव्या ने सागल की राजनटकी के पद की कामना की थी। नागरिक ने बारिश का समाधान किया। वर्णाश्रम की व्यवस्था से अभिषेक चुट होकर दिव्या ने नगर छोड़कर इसी पाठशाला में शरण ली है। क्या तुम इसी क्षण? पथिक शेष बात अनसुनी कर पाठशाला की द्वार की ओर बढ़ गया। भिक्षु और पथिक दोनों ही विराट समूह को भेद कर पाठशाला के द्वार की ओर बढ़ने का यत्न कर रहे थे। पथिक पुकार कर रहा था, हे सौम्य नागरिकों, मुझे पाठशाला का मार्ग दो। हे भद्र नागरिकों, मुझे पाठशाला का मार्ग दो, मैं उस पीड़ित नारी को सांत्वना दूंगा। हे नागरिकों, मुझे मार्ग दो, मैं उस नारी के लिए सूरसेन से पैदल चलकर आ रहा इसी क्षण यहाँ पहुंचा हूँ। भिक्षु पुकार रहा था, नागरिकों, मैं प्रताड़ित नारी को धर्म की शरण में लेकर शांति देने आया हूँ, मुझे मार्ग दो। व्यग्र जनसमूह न भिक्षु की, न पथिक की, न पाठशाला के रक्षक की पुकार सुन पा रहा था। आंगन के समीप स्थान में समूह ऐसा भर गया था किसी के लिए भी हिल सकना संभव न था। सहसा नगर द्वार के तोरण से घड़ियाल बजने का शब्द सुनाई दिया और एक राजपुरुष ने तोरण पर खड़े होकर चेतावनी दी, नगर द्वार मुंडने का समय हो गया है, नगर प्राचीर में शरण चाहने वाले द्वार में प्रवेश करें। पाठशाला के आंगन से जनप्रवाह द्वार की ओर और पाठशाला के द्वार से नगर द्वार की ओर बढ़ चला। उस प्रवाह को भेद पाने में असमर्थ होने के कारण पथिक भिक्षु के और भिक्षु के पर पीछे की ओर पड़ने लगे। उसी समय एक तुरी का शब्द सुनकर जन का कोलाहल अस्तब्ध हो गया। नगर द्वार की ओर बढ़ता जनसमूह भी स्थिर हो गया। नगर द्वार से चार दीप दंडधारी अश्वारोही प्रकट हुए और उनके पीछे तुरी बजाते हुए एक अश्वारोही ने आकर समूह को संबोधन किया। सावधान, सावधान, जन श्री गण परिषद के महामात्मे धर्म व्यवस्थापक महासामंत रुद्रधीर के लिए मार्ग दे। जन ने जयघोष से आचार्य का अभिवादन किया। तुरंत मार्ग प्रशस्त हो गया। आचार्य रथ से उतरे। पाठशाला के रक्षक राजपुरुष ने रंजानु होकर उन्हें प्रणाम किया। आचार्य गंभीर स्वर में बोले, पाठशाला में आने वाली नटकी कहाँ है? रक्षक मार दिखाओ। पाठशाला का रक्षक मार दिखाता हुआ अलिंद की ओर बढ़ा। अष्टम जनसमूह काष्ठ की मूर्तियों के समान निश्चल था, परंतु भिक्षु और मथुरापुरी से आया पथिक बारिश अवसर पाकर आचार्य के पीछे पीछे चले। चारों दीप दंडधारी कक्ष के चारों कोनों में खड़े हो गए। अधियारा कक्ष प्रकाश से जगमगा उठा। दिव्या अप्सरा के वेश में भिट्टी का सहारा लिए भूमि पर बैठी थी। उसने मस्तक उठाकर आगंतुकों की ओर देखा। वह निश्चल बैठी रही। द्वार से झांकता हुआ जल समूह विस्मय से बौद्ध था। दिव्या ने अस्थिर दृष्टि से आचार्य की ओर देखकर प्रश्न किया, इस प्रताड़िता के लिए अब और क्या आ गया है? भूमि पर बैठी दिव्या के समूह कंचुकी द्वारा बिछाया आसन ग्रहण कर आचार्य बोली, देवी तुम्हारा आस्था डर्ट की वेश्या के आसन पर नहीं, तुम कुलकन्या हो। तुम्हारा आस्था कुलवधू के आसन पर, कुलमाता के आसन पर है। आचार्य रुद्रधीर देवी को आचार्य कुल की महादेवी के आसन पर स्थान देने के प्रयोजन से उपस्थित है। देवी अपना स्थान स्वीकार कर आचार्य को कृतार्थ करो। दिव्या ने निष्पलक दृष्टि आचार्य के मुख पर स्थिर किए गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आचार्य कुलवधू का आसन, कुलमाता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्लभ संभव है। यह अकिंचन दाढ़ी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुकाती है, परंतु आचार्य कुलमाता और कुल महादेवी निराधृत वेश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। ज्ञानी आचार्य कुलवधु का सम्मान, कुलमाता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। कुछ क्षण मौन रहकर दिव्या बोली, ज्ञानी आर्य जिसने अपना स्वत्व ही त्याग दिया वह क्या पास कीगी? आचार्य दासी को क्षमा करे, दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। आचार्य अपनी असीम क्षमता में असमर्थ अनुभव कर दिव्या की कठिन मूर्ति को विश्व दृष्टि किए मौन बैठे रहे। आचार्य मौन रहे थे। उस समय आचार्य के आसन के समीप आकर भिक्षु ने पुकारा, आर्य तथागत का सेवक भिक्षु पृथु से असवाद से प्रताड़ित नारी को तथागत की शरण में ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। दीप दंडों के प्रकाश में सम्मुख खड़े कासाय चीवरधारी भिक्षु का स्वर सुनकर उसे पहचान कर दिव्या के नेत्र फैल गए। एक कंपन सा उसके शरीर में अनुभव हुआ। एक गहरे श्वास से उसका वक्ष ऊपर उठा और वह भिक्षु की ओर दृष्टि लगाए फिर निश्चल हो गई। आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर भिक्षु पृथ्वी सहित बोला, देवी तथागत की कृपा से तुमने आसक्ति और मोह के भ्रम को जानने का अवसर पाया है। देवी शांति वैभव में नहीं, शांति प्रभुता में नहीं, शांति भोग में नहीं, शांति तृप्ति में नहीं। देवी शांति केवल अलासक्ति में है, चिरंतन सुख केवल निर्वाण में है। देवी संसार के पीड़ित समाज से प्रताड़ित जन्म बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में शांति पाते। देवी उस अपार करुणा की शरण ग्रहण करो। बौद्ध दिव्या की दृष्टि क्षणभर के लिए धुंधली हो गई। दीप दंड से प्रकाशित कक्ष में अधिकार और शक्ति की प्रतिमा महाबात में रुद्रधीर और काषाय चीवरधारी भिक्षु उसकी दृष्टि से लुप्त होकर मथुरापुरी के महाबोधि विहार के मुने पदों के सम्मुख वृक्ष के नीचे संतान को गोद में लिए असरण आठ नारी भगवान बुद्ध धर्म और संघ से शरण की भिक्षा मांगते दिखाई देने लगी। दिव्या के नेत्र पुनः दीप्त हो गए। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भद्दे भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? भिक्षु ने धीर स्वर में उत्तर दिया, देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। भट्टे अपने निर्वाण धर्म का पालन करें। दिव्या ने मंद परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है, भिक्षु उसे अपने मार्ग पर जाने दे। उपस्थित जनसमूह की स्तब्धता से अवसर पाकर पूर्व देश से आए पथिक ने भिक्षु के समीप आकर पुकारा, मैं बारिश देवी के सामीप्य के लिए ही मथुरापुरी से सागर आया हूँ। दीपदंड के प्रकाश में दिव्या के साथ नेत्र पुनः विस्मय और जिज्ञासा से फैल कर चमक उठे। धूल धूसरी पथिक बोला, बारिश देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। बारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के सुख दुख अनुभव करता है, अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है। उस अनुभूति का ही आदान प्रदान वह देवी से कर सकता है। वह संसार के धूल धूसरी मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के दायित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है। पलभर सोचकर बारिश ने कहा, संतति की परंपरा के रूप में मानव को अमरता दे सकता है। भूमि पर बैठी दिव्या अनेक क्षण विचार में ग्रीवा झुकाए रही, फिर उसने सहसा भिट्टी का आश्रय छोड़ दोनों बाहु फैला दिए। दिव्या का स्वर आर्द्र उठा, आश्रय दो आर्य। समाप्त।